हेलो
हेलो हेलो
वॉइस ऑफ अमेरिका, आपको मेरी आवाज़ आ रही है
जी? मैंने बात करनी है जी, गाने की फरमाइश करनी है जी।
हेलो, आवाज़ आ रही है?
हेलो चैट बस्टर्स, एक गीत की फरमाइश है।
अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं चार्ट बस्टर्स, और एक बार फिर मैं हूँ सादिया ज़ेब्रांजा, आई एम बैक। बिल्कुल, आपके मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले, कुछ लोगों ने तो गिन के रखा हुआ था कि अब इस वीक में आप मौजूद होंगी यहाँ पर। जी हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बतों का, आपके मैसेजेस का। मैंने आज कोशिश तो बहुत की है कि मेरी गैर मौजूदगी में जितने भी मैसेजेस आपने किए हैं वो मैं सब लाऊं और लेके भी आई हूं। लेकिन चूंकि आज ख़वातीन का आलमी दिन है तो मैं चाह रही थी कि कोई प्रोमिनेंट कोई खातून हमारे साथ हो, उनसे भी हम बातचीत करें, और आप लोगों से भी मैं चाहूँगी कि आप हमें कॉल करें 0800 777 89 पर, और आप हमें बताएं, बल्कि मैं चाहूंगी कि हमारी जो फीमेल लिसनर्स हैं बहुत हैं वो प्लीज़ कॉल करें, लेकिन अगर हमारे जो मेल दोस्त हैं वो भी कॉल करते हैं तो वो हमें बताएं कि उनकी ज़िंदगी में किस औरत का इन्फ्लुएंस रहा या कितना असर रहा, किससे वो मुतासिर हुए, किसने कोई किरदार अदा किया उनकी कामयाबी में, उनकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में। तो आप प्लीज़ हमें कॉल कीजिए। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं आज के शो में, समीना अहमद साहिबा, आप सब उनसे वाकिफ़ हैं, बहुत ही अहम और बड़ा नाम है इंडस्ट्री में, तो बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, तो हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको एक गीत सुनवाते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं चार्ट बस्टर्स। मैं हूँ सादिया ज़ेब्रांजा और मेरे साथ प्रोड्यूसर हैं अंजुम हेरल्ड गिल और इंजीनियर हैं अल सैंटोस, और हमें ज्वाइन किया है समीना अहमद जी ने। बहुत शुक्रिया आपका समीना जी, आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमारे लिए वक्त निकाला है। जी समीना जी, चूंकि मैंने बहुत सोचा कि ऐसा कौन हो सकता है जिसने देखा हो, जिसने बहुत स्ट्रगल की और एक नाम बनाया हो, इज्जत बनाई हो, बहुत से ऐसे लोग मेरे जहन में आए, लेकिन मेरा दिल चाहा कि आज मैं आपसे बात करूं, क्योंकि मैं बहुत एडमायर करती हूं आप और बहुत रिस्पेक्ट करती हूं कि आपने बहुत ही डिग्निटी के साथ एक ऐसी जगह पे अपनी मकाम बनाया है जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें भी करते हैं, कॉन्सेप्ट्स भी उनके बड़े अजीब अजीब से होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपने बहुत ही एक बेहतरीन मिसाल पेश की है ख़वातीन की स्ट्रगल की भी और किस तरह से वो आगे भी बढ़ सकती हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप जब आपने ये सफर शुरू किया तब से आज की ख्वातीन जो हैं उनमें कितना फर्क देखती हैं आप, कितना आगे बढ़ी हैं, उनकी तरजीहात कितनी बदली हैं?
देखिए, जब पहले तो मैं ये अभी जो गीत सुन रही थी, हम माएं हम बहनें हम बेटियां, आज आज के दिन के हवाले से, तो मुझे किसी ने कहा था कि ये 1974 का लिखा हुआ है।
जी जी।
और ये जमीलुद्दीन आली ने लिखा था।
सही।
और ये बहुत पॉपुलर हुआ था चाइना में और तुर्की में, और अभी भी वहां पर जैसे जीवे जीवे पाकिस्तान चाइनीज जो होते हैं न्यूट्रिशंस या जो वो कल्चरल ट्रूप भेजते हैं वो उनको ये आता है, और साथ जीवे जीवे पाकिस्तान तो मैंने सुना है चाइनीज।
जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली।
तो ये भी एक पॉपुलर नगमा है जो कि वो गा सकते हैं। तो और हम लोगों ने तो बहुत गाया है विमेंस डे के ऊपर, हमने हम लोगों ने लाहौर में विमेंस मार्च पे, ये एक ऐसा है जो कि हम सब मिलके बहुत गाते रहे हैं जब गैदरिंग होती है। एक तो और इस तरह से नगमे हैं जो कि बहुत यूज किए जाते हैं मौतों के आलमी दिन पर, तो एक तो ये बात हो गई। आप दूसरा आपका सवाल था कि ये मेरा शुरुआत तो बहुत पुरानी है, अब क्या पुरानी पुरानी इतनी बातें करें, लोग भी हैरानी हूँ क्या से जो फर्क नजर आता है। देखिए पहले कम औरतें थीं इस फील्ड में
जी।
बहुत कम थी, बहुत मुश्किल थी, लोग अच्छा नहीं समझते थे टेलीविजन पर आना, एक्टिंग करना टेलीविजन का। अभी भी मैंने ये देखा है कि टेलीविजन में बहुत सी बच्चियां होती हैं, वो कहती हैं हमें इजाजत मिल जाएगी एंकर होने की, होस्ट करने की, खबरें पढ़ने के लिए ये हमें इजाजत मिल जाती है, मगर एक्टिंग के हमें इजाजत मुश्किल से मिलती है या नहीं मिलती है। तो ये अभी भी है, मगर हैविंग सेड दैट अब काफी सारे लोग हैं, काफी लड़कियां हैं, यंग लड़कियां हैं जो कि इस फील्ड में आनी शुरू हो गई हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मेरे मैं ये कहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि अब एक पार्टिसिपेशन खवातीन की ज्यादा है, दे टेक इट अप एज अ प्रोफेशन और आके वो अपना काम करते हैं, अच्छी तरह से काम करते हैं, बहुत बहुत अच्छा काम हो रहा है। बहुत अच्छी नई एक्ट्रेसेस आई हैं जो कि आगे बढ़ने की सलाहियत रखती हैं। तो पहले जो जो मुश्किलात थी कि हम ड्रामा करने अगर जा रहे हैं, स्टेज का ड्रामा करने जा रहे हैं, तो फिर और ही ज्यादा मुश्किल था। तो बहुत से ड्रामे इसी वजह से लिखे भी ऐसे गए कि जिसके अंदर खवातीन एक दो होती हैं, और वो भी ऐसी जो कि ज्यादा जिनके ऊपर बोझ ना डाला जाए, उनको ज्यादा काम ना करना पड़े और वो अपने छोटे छोटे सीन उनके हों। इस तरह से बहुत सारे ड्रामे लिखे गए जहाँ पर खवातीन का काम कम था, मगर अब मुझे नजर आता है कि ऐसे ड्रामे लिखे जाते हैं जिसमें ज्यादातर खवातीन होती हैं।
स्मीना जी, आप ये बताइए कि अगर इस तरह के जब हम दिन मनाते हैं तो इससे कितना फर्क पड़ता है, कितना शऊर और आगही जो है लोगों की उस पे असरअंदाज होते हैं दिनों का मनाया जाना, या कोई भी एक दिन डेडिकेट कर देना किसी भी हवाले से।
देखिए दिन मनाने में क्या हर्ज है,
सही,
दिन क्यों ना मनाए। एक ऐसे मतलब हम बच्चों का भी आलमी दिन मनाते हैं, क्यों ना हम एक एक दिन करना तो हमें हर वक्त चाहिए, मगर ये वो लोग हैं जो कि डिसएडवांटेज लोग हैं, जिनके पास इतने हकूक नहीं हैं, बराबरी जहां पर नहीं है, जिनको जरूरत है कि उनको एक दफा अपने अचीवमेंट्स को, अपने प्रॉब्लम्स को वॉइस कर सकें एक जगह बैठ के, या जगह जगह बैठ के और कुछ इकट्ठे हो सकें। वरना तो खवातीन हैं या बच्चों के दिन बनाया जाता है या कोई और दिन मनाया जाता है, उसमें हम तो अदरवाइज तो हम बात ही नहीं करेंगे ना।
बिल्कुल, और सोचने पर मजबूर भी करता है, कुछ ऐसे लोग हैं उनको स्ट्राइक भी फिर करता है कि ठीक है अब ट्रेंड ये है, अब हमें बाज ऐसे लोग हैं जैसे हमारे शो में भी बहुत से लोग कॉल्स करते हैं और कहते हैं कि अब हमें पता चला है, या फिर इन दिनों को मनाने के बाद कि हमें किस तरह से रिस्पेक्ट करनी है और हमें किस तरह से अप्रिशिएट करना है उनकी कोशिश को। तो आप तो इस हवाले से काम भी बहुत करती हैं स्मीना जी।
जो लेबर डे होता है, नए डे जो होता
जी,
है वो भी मनाया जाता है, वो मजदूरों का दिन है
जी।
और उसमें बहुत, अगर आप उनकी रैलीज में जाएं या उनकी जहां गैदरिंग्स होती हैं और तकरीर उनकी सुने, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
बिल्कुल। और
सिमिलरली जो औरतों का है, औरतों का जो आलमी दिन है, उस दिन हर जगह में आपको रैलीज भी नजर आती हैं, आपको सेमिनार्स भी होते
मार्च
हैं,
किए जाते हैं,
सेलिब्रेट भी किया जाता है कि हमारी खवातीन की क्या अचीवमेंट्स हैं और कहाँ कहाँ पर ये किन किन शोबों में काम कर रही हैं, और कुछ ये भी डिस्कस किया जाता है कि कहाँ पर हमें और काम करने की
जरूरत है। बिल्कुल। तो उस्मीना जी हमारे साथ ही रहेगा, हमें दो कॉलर्स हैं हमारे साथ, वो बात करना चाहते हैं। पतों की से साजिद इरशाद ने हमें कॉल की है। जी साजिद, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको और आपके मौजूद मेहमान समीना अहमद को मेरी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम, और पत्तों की के फूल आप दोनों के लिए।
थैंक यू।
और आपको मैं वेलकम बैक करता हूँ, आपकी कमी बहुत महसूस हुई, आपकी खूबसूरत आवाज सुनने को मिली, आपको वेलकम बैक करते हैं। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर मैं ये कहूँगा कि खवातीन के आलमी दिन पर खवातीन के साथ साथ हर उस बाप को, बेटे, शौहर, गर्द, हर उस मर्द को मैं मुबारकबाद, और जो खवातीन को इज्जत और तकीर देते हैं, जो अपने लिए जरूरी समझते हैं बाख्तियार बावकार खातून का मनज़म होना, पुरसकून माशरे की तशकील की लामत है। वैसे खवातीन अपनी जबान, नजर, सोच, ख्याल, रवैयों और किरदार से हर खातून को इज्जत देने वाले हर मर्द को आलमी यौम खवातीन बहुत बहुत मुबारक हो।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच,
और सबको बहुत सारा सलाम। और आज हमारी जो खवातीन है, हमारी जो माएँ, बहनें, बेटियां हैं, जिस मकाम आज वो खड़ी हैं, और हर शोबा जिंदगी में खवातीन जो है अपना एक रोल मॉडल है, और मैं तो समझता हूँ कि ये सारे दिन खवातीन के दिन है। और बाकी जो है ना, कहते हैं कि मर्द पढ़ा, फर्द पढ़ा, खवातीन पढ़ी, पूरा खानदान पढ़ा, हमें खवातीन की तलीम पर बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए, और खवातीन के लिए बहुत सारी मुबारकबाद, और सारी खातून को जो हमारे हर शोबा जिंदगी में हमारे साथ खड़ी हैं उनको मैं सल्यूट पेश करता हूँ। और हर रूप में खवातीन जो है इज्जत के काबिल हैं, और मेरी तमाम पर जितने भी लिसनर्स बहन, बहनें, बेटियां सुन रही हैं, उनको मैं बहुत सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो आज का दिन मना रही हैं, और बहुत सारी एनजीओ ने भी सेमिनार्स किए हैं, गवर्नमेंट भी इस सिलसिले में काम करती है। तो मैं खवातीन के लिए यही कहूंगा कि इनकी हिम्मत, जुशात और बहादुरी को ढेरों सलाम, बहुत शुक्रिया,
थैंक यू सो मच। और हमारे अगले कॉलर हैं नजीर अहमद भिंडर साहब ने कॉल की है हमें अरूप गुजरांवाला से। जी नजीर अहमद साहब
जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम,
ठीक है आप?
अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक
के आ गए हैं।
जी जी
छुट्टी एंजॉय की है, फिर घर पे अम्मी के साथ ही या घूम फिर के?
आपको पता है ना, जब आप फैमिली के साथ जाते हैं तो कितना अच्छा और कितना सुकून मिलता है आपको, तो मैंने अपनी वालदा के साथ ही वक्त गुजारा है।
जी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मौजूद मेहमान को मैं सलाम कहता हूँ। मैं तो एक जिम्मेदार घराने से तल्लक रखता हूँ, हमारी खवातीन तो रोजे अव्वल से हमारी मददगार हैं और खेती बाड़ी में हमेशा काम करती हैं, शाना बशाना मर्दों के, और हमें बड़ा फख्र होता है इस बात पे। अब तो बाकी भी शोभा है जिंदगी में खवातीन का बहुत दखल आ गया है, बहुत अच्छा है, क्योंकि मुकाबले की जिंदगी में अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने बिल्कुल सही कहा नजीर अहमद भिंडर साहब। और हमारे साथ अरशद नदीम घल्लू हैं भक्कर से।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम,
मेरी तरह से समीना आप को भी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
हेलो। जी जी वो सुन रही हैं, हमने वालेकुम सलाम भी कहा है।
जी आप छुट्टी गुजार के खैरियत से आ गए?
अल्लाह का शुक्र है,
मैंने आपको फेसबुक पे भी याद किया, भाई अच्छी और खुशगवार यादें लेकर आई होंगी।
बिल्कुल
जी, और मैं आपकी ना कंपेयर साहिब थी फायजा बुखारी को याद करूंगा, बड़े बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने आपके गैर मौजूदगी में पेश किया, बड़े ही तामल से
आपका मैसेज पहुंचा दी,
टाइम देती थी। हेलो
जी जी, बहुत शुक्रिया, मैं आपका मैसेज पहुंचा दूंगी, थैंक यू सो मच। स्मीना जी मेरे साथ रहिएगा, हम चलते हैं अगले गीत की तरफ, क्योंकि अगर हम बातों में शुरू हो गए दो खवातीन तो फिर लोगों की जो फरमाइशें हैं वो रह जाएंगी। आप प्लीज़ हमारे साथ ही रहिएगा। एक हमारी बहुत ही अच्छी लिसनर हैं, कॉलर हैं, महमल ईमान डी आई खान दराबां कलां से, उन्होंने गीत की फरमाइश की थी, तो उनकी फरमाइश का ये गीत सुनते हैं, फिर वापस आएंगे और आपसे बातचीत करेंगे।
Man amadi am
तो जाएगा पर संभले नहीं, तुम ही कोई रास्ता दिखाओ ना, बस यही मैं चाहूँ कोई बात करो, है सुना मन तुझ बिन आओ ना, तोरे नाम कर तू जो भी है मुझ में, तोरे नाम कर तू जो भी है मुझ में, बोले बोले दिल तेरा नाम मुझ में, बोले बोले दिल तेरा नाम,
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं चार्ट बस्टर्स। आज हमें ज्वाइन किया है स्मीना अहमद जी ने। स्मीना जी, पाकिस्तान के रेफरेंस से मैं आपसे पूछूंगी कि जाहिर है कहीं भी किसी भी मुल्क का एक मखसूस माइंड सेट होता है, एक जहनी रुझान होता है, तो पाकिस्तान में भी खवातीन के बारे में एक मखसूस माइंड सेट है, तो कुछ तब्दीली के आसार आप देखती हैं या उसके लिए और मजीद कितनी जद्दोजहद करने की ज़रूरत है?
अभी तो मेरे ख्याल में तो अभी बहुत काम बाकी है, बहुत सारा काम करना है कि दोनों मर्द और औरत जो हैं वो उनको बराबर का मकाम दिया जा सके, अभी बहुत काम है। कुछ लॉज हमारे खवातीन जो हैं जो जद्दोजहद करती रहती हैं उन्होंने पास करवाई हैं, हरासमेंट एट वर्क प्लेस, डोमेस्टिक वायलेंस, और सिंध असेंबली ने पास किया लॉ कि मैरिजेबल एज क्या होगी, कि किस उम्र की बच्ची की शादी होनी चाहिए, कि 18 साल से कम उम्र की बच्ची की शादी कानूनन जुर्म करार दिया गया है। तो ये इस कुछ ये अब बात यह है कि लॉ तो पास हो जाती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होने में कितना टाइम लगता है, क्या मैकेनिज्म होते हैं, लोगों का माइंडसेट बदलने की जरूरत होती है कि जो सदियों से एक पैट्रियार्कल सिस्टम जो चल रहा है उसको आप चेंज कैसे करेंगे, कितना टाइम लगेगा। अभी मुझे यूं लगता है कि अभी वक्त लगेगा, मगर हैविंग सेड दैट हमें चेंजेस भी नजर आते हैं, बेहतरी भी नजर आती है कि एक्सेप्ट करते हैं लोग अब खवातीन पुलिस में जो है। कल ही मैं एक जगह गई हुई थी जहां पर कुछ अवार्ड दिए जा रहे थे और वहां पर ना सिर्फ शोबिज के लोगों की खिदमात को सराहा गया बल्कि पुलिस की जो खवातीन थी वो जो पायलट खवातीन कुछ थी, मतलब एक खातून मुझे मिली थी जो कि कमर्शियल पायलट है, जो कौन सी एयरलाइन में, मगर वो कमर्शियल पायलट है, हवाई जहाज और आती है. तो अब इस तरह से आपको सिर्फ डॉक्टर और नर्सेज नहीं नजर आ रही हैं, आपको इंजीनियर्स भी नजर आ रही हैं, खवातीन आर्किटेक्ट भी हैं, हर शोबे में है. मगर मैं ये कहूंगी कि अभी भी कम है. जो इक्वालिटी होती है, जितने के बराबरी हो दोनों में, वो अभी भी नहीं है. और अभी भी आपके ऊपर काफी सारे कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर कि, और कुछ माइंडसेट ऐसे हैं जहाँ पर खवातीन का घर से बाहर निकलना भी मायूब समझा जाता है.
तो स्मीना जी, पिछली दफा आपसे बात हुई थी तो एक बात आपने की थी, आपने ये कहा कि आज भी जब भी अकल की बात होती है या डायरेक्शन की, जब आप ड्रामे की डायरेक्शन दे रही होती हैं, तो एक सोच ये भी है कि ये औरत है, इसे क्या पता. तो मुझे ये बात बड़ी स्ट्राइक की. और उसके बाद मैंने एक ड्रामा भी देखा जिसमें एक लड़की है तो वो आर्ग्यू करती है कि क्यों फीमेल जो है उनको मेकअप, जेवर और खूबसूरती के एक तराजू में तोला जाता है, उसकी काबिलियत को क्यों नहीं देखा जाता, उसे क्यों नहीं तोला जाता. तो इसको किस तरह से तब्दील किया जा सकता है कि औरत का एक हसीन पैकर की बजाय एक काबिल और एक हिम्मत बाहिम्मत खातून के रूप में आप देखें उसे.
देखिए सब, ये एक प्रोसेस है जिसमें कि बहुत टाइम लगता है और टाइम लग रहा है अब बहुत. अब मैं, जैसे मैंने कहा कि अब जब बहुत सारी खवातीन जो है वो और जगहों में काम करने लगी हैं, सर्जन हैं, बड़ी बड़ी आला डॉक्टर्स हैं, पढ़ाने में बहुत उन्होंने काम किया है, पीएचडी किए हुए हैं, तो अब उनको माना जाता है कि वो सिर्फ उनकी खूबसूरती को नहीं देखा जाता, उनकी शक्ल सूरत को नहीं देखा जाता, बल्कि देखा जाता है कि उनकी काबिलियत क्या है.
सही.
तो अब धीरे धीरे देखिए, हर धीरे धीरे ही चेंज होगा ना.
जी जी.
जो एक जमाने से चला आ रहा है कि औरत जो है वो एक प्रॉपर्टी है, एक मर्दों के लिए अपना अपने घर पे है आपके एक खातून. और मतलब अभी भी हमारे इलाकों में जो वनी का की रिवाज है या रिवायत है, वो अभी भी कहीं कहीं पर प्रैक्टिस होती है, क्योंकि एक बहुत ही मतलब आप अपना तनाजा सेटल करने के लिए एक औरत की जिंदगी दांव पर लगा देते हैं ना.
जी जी.
तो ये अभी अभी तो बहुत और काम करने की जरूरत है और लोग कर रहे हैं, एनजीओस भी हैं, पार्लियामेंटेरियंस भी हैं और बहुत से खवातीन हैं जो कि सिविल सोसाइटी में भी, जो कि इन चीजों के निशानदेही भी करती हैं और लॉज बनाने की कोशिश में लगी रहती हैं. और फिर विमेन पार्लियामेंटेरियंस हैं और हमारे साथ बहुत सारे मर्द भी हैं जो कि जानते हैं कि अगर इस तरह से अकेले अकेले में काम होगा तो मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती.
और स्मीना जी, इसमें औरत ही का एक बड़ा बुनियादी किरदार भी आता है. आपकी इन तमाम बातों से मेरे जहन में आया, और वो है माँ. जब वो घर में दो तीन लड़के लड़कियों को, अपने बच्चों को पाल रही होती है, तो अगर वो उनमें तफरीक ना रखे, उनके खाने पीने, पहनने ओढ़ने में और किसी भी तरह की जो मराहत हैं उनमें अगर वो फ़र्क ना रखे, तो बच्चे के या लड़के के जहन में ये नहीं आता कि वो बहनों से बरतर है, औरत से वो बरतर है और वो बहुत ही कोई बड़ी एक मखलूक है और उससे कहीं बेहतर है. तो मेरा ख्याल है कि वहाँ भी औरत को ही ये समझने की ज़रूरत है कि बराबरी की सतह पर पाले बेटी को भी और बेटे को भी.
जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरत है. और इसके अंदर ना सिर्फ माँ का बल्कि बाप का भी किरदार है कि
exactly.
वो भी अपने बेटे को और अपनी बेटी को बराबर समझे, क्योंकि वो घर का सरबरा है. तो इस वजह से वो भी एक क्यू दे सकता है, एक सेट, एक माइंडसेट बना सकता है कि दोनों बराबर हैं. वो लड़की को हर बात से मना ना करे. अगर बच्ची की ख्वाहिश है कुछ काम करने की, बाहर जाके पढ़ने की, तो उसको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ना सिर्फ माँ, मेरे साथ बाप भी खड़ा हुआ है.
exactly.
भाई भी हैं मेरे साथ जो कि मुझे सपोर्ट कर रहे हैं. ये मुआशरा तो तभी बदल सकता है ना जब हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे को संभालेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे. हम ये द थिंग इज कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो खवातीन है और ये जो आलमी दिन मनाने की कोशिश कर रही हैं और ये इस तरह से जो है और ये बहुत बात करती हैं कि, तो ये मर्दों के खिलाफ है. ये
बिल्कुल,
सोच
ये बिल्कुल दुरुस्त
नहीं है.
जी जी.
कि औरतें जो हैं वो मर्दों के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ चाहती हैं कि बराबरी हो. जितना हक या हुकूक मर्दों को मिलते हैं उतने ही उनको भी मिले. हमारे यहाँ ये भी एक तासुर दिया जाता है कि घरों के अंदर औरत की बात सुनी जाती है, ज्यादातर सुनी जाती है. मर्द बाहर रहते हैं वो कहते हैं कि भाई अच्छा निदान तभी चलता है कि घर जो है वो औरत संभाल ले, मगर उसके अंदर आप देखें कि लॉ रूल जो है बच्ची के लिए कि वो बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी, उसकी शादी कहाँ होगी कैसे होगी, ये वाली ऐसी डिसीजन जो कि उस बच्ची की जिंदगी की डिसीजन हैं वो किसके हाथ में,
बिल्कुल, और आगे पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी, बिल्कुल
हाँ, वो क्या प्रोफेशन में है, क्या, बहुत सी बच्चियां ऐसी भी मिलती हैं जो कहती हैं कि डॉक्टर हैं और वो कहती हैं कि हम जब शादी करके जाते हैं तो हमारे जो सास हैं या जो हमारे ससुर हैं या हमारा ससुराल जो है वो नहीं चाहता कि हम काम करें, तो इस वजह से हमें छोड़नी पड़ती है। मैं कहती हूँ ये कितना वेस्ट है,
बिल्कुल
वेस्ट। बच्ची जो इसने बहुत शौक से डॉक्टरी पढ़ी और वो डॉक्टर बनी और ब्याह के वो कहीं और गई है किसी घर में और वो लोग उसको काम नहीं करने देते,
बिल्कुल। स्मिना जी आप हमारे साथ ही रहिएगा, जी बिल्कुल आप हमारे साथ ही रहिएगा, एक और गीत की तरफ चलते हैं और फिर आपसे इसी तरह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हमें इस गीत की फरमाइश आई थी वकार यूनुस की तरफ से बहावलपुर से, तो वकार उम्मीद है आप सुन रहे होंगे शो, तो आपकी पसंद का ये एक बड़ी खूबसूरत गजल।
मेरे शौक मेरा इंतजार आज एवं लड़न पड़े लगनाए तू सोच नए सितम गाला जा मेरे शौक दरे दुहा दिया लज्जता ने मामे हिजर ते पावे विसाल होए वक्खो वक्ख दुहा दिया लज्जता ने मेरे सोहने आ जा हजार वारी आजा प्यारे अते लगवारिया जा मेरे शौक दले इक बार ते हस्तियां ते खुद परस्तियां ने तेरी वाज बसदा उठे हस्तियां ते खुद परस्तियां ने मैं खाने बिच मस्तियां ही मस्तियां ने सर बन के खुशियार आजा मेरे शौक तनी बार
वेलकम बैक वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप हमारा शो सुन रहे हैं चार्ट बस्टर्स और हम बात कर रहे हैं स्मिना अहमद जी से। स्मिना जी आपका बहुत शुक्रिया आपने हमारे शो में शिरकत की। आपसे एक आखिरी सवाल करूंगी, आप ये बताइए कि خواتین کی امپاورمنٹ کے حوالے سے یا برابری کے حوالے سے مرد اور خواتین دونوں کا کیا کردار بنتا ہے؟ مرد کو کیا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے اور عورت کو خود کیا کرنے کی ضرورت ہے؟
مرد کو ظاہر ہے کہ ٹالرنٹ ہونے کی ضرورت ہے, اس کو جو برابری کا رتبہ دینے کی ضرورت ہے,
اسے سپیس دینے کی ضرورت ہے,
بہت جی
اسے سپیس دینے کی ضرورت ہے, عورت کو
سپیس دینے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ سپیس دینے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنا اپنے آپ کو ایکسپلور کر سکے, اپنی بات بتا سکے, اپنی خواہشات کا بیان کر سکے, اور یہ کہ وہ جو اس کی ڈریمز ہیں, وہ جو اس کے خواب ہیں, جو وہ کرنا چاہتی ہیں وہ بھی کر سکیں. اس کو سپورٹ چاہیے. تو اگر ان کو ہمارا جو جس طرح کا معاشرہ ہے, آئسولیشن میں تو کوئی بھی نہیں رہتا ہے, ہم نے مل جل کے ہی رہنا ہے اور مل جل کر ہی آگے چلنا ہے, تو اگر ہم ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کریں گے تو کہیں پر بھی آگے بڑھنے کے مواقع نہیں ملیں گے. تو بہت ضروری ہے, سب سے پہلی بات تو یہ کہ سپورٹ چاہیے, ٹالرنس چاہیے, اور یہ اکنالج کرنے کی ضرورت ہے کہ عورت جو ہے وہ بھی انسان ہے, اس کے بھی ویسے ہی جذبات ہیں جیسے کہ آپ کے ہیں, اس کی بھی ایسی خواہشیں ہیں, اس کے ایسے خواب ہیں جن کو وہ ریئلائز کرنا چاہتی ہے, جن کو وہ پورا کرنا چاہتی ہے جیسے کہ آپ کے بھی ہیں. تو دونوں طرف سے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ مرد جو ہیں وہ زیادہ امپاورڈ ہیں ایٹ دس مومنٹ ان لائف, اس لیے ان کو بڑا اپنا بڑا پن دکھانا پڑے گا کہ وہ عورتوں کو ساتھ لے کر چلیں, ان کو سپورٹ کریں.
صحیح, بہت شکریہ اسمینہ جی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, تھینک یو سو مچ, اور ہماری طرف سے خدا حافظ.
بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو, خدا حافظ.
اور آپ کے بہت سارے میسیجز تھے, میں چاہوں گی کہ کچھ نہ کچھ تو ان میں سے شامل کر لوں. عمر شاہ نے سری نگر کشمیر سے لکھا ہے کہ میں آپ کا ریگولر لسنر ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کا شو, تھینک یو سو مچ. اور اس کے علاوہ کتنی دفعہ میں نے کہا ہے کہ آپ پلیز رومن میں نہ لکھا کریں, مجھے نام بھی سمجھ میں نہیں آتے اور وقت اتنا زیادہ لگ جاتا ہے. ناصر کاظمی کی ایک غزل سننا چاہی تھی, کون ہے یہ, دیکھیں نام مجھے بالکل بھی نظر نہیں آ رہا کہ کون ہے, بلکہ لکھا ہی نہیں ہے. اس کے بعد محمل ایمان نے ڈی آئی خان دربان کلاں سے لکھا ہے کہ ویلکم بیک, کیسی رہیں آپ کی چھٹیاں, تو یقیناً آپ نے پروگرام تو سن ہی لیا ہوگا, بہت اچھی رہیں. اور لکھا ہے کہ میں آپ کا پروگرام باقاعدگی سے سنتی رہی ہوں, بہت اچھا لگا, اور فرمائش کی ہے, آپ کی فرمائش بالکل سر آنکھوں پر پوری کر دی ہے ہم نے. یہ ہیں جی بڈگام کشمیر سے محسن عباس, انہوں نے ایک گیت سننا چاہا تھا, ہمیں مل نہیں پایا, کوشش کریں گے کسی اور پروگرام میں آپ کی پسند کا یہ گیت شامل کیا جائے. نجمہ نوشاہی نے فیصلہ آباد سے ایک شعر لکھا ہے, لکھتی ہیں, بس کہا جائے سہولت سے نہیں جی پایا, میری نسلوں کو میرے دکھ نہ بتائے جائیں. کیا بات ہے, زبردست. طارق رعوف لکھتے ہیں کہ میں کئی سالوں سے ریڈیو کا خاموش سننے والا ہوں, ہر سال کیلنڈر کا تقاضا کرتا ہوں جو کبھی پورا نہیں ہوا, اس سال تو بھیج ہی دیں. تو بالکل بھیج دیں گے, میں نے ایڈریس آپ کا فوراً نوٹ کر لیا تھا, ابھی ہم بلکہ لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا, ابھی تک ملے نہیں ہیں, ملے اس لیے نہیں کہ ہم نے بھیجا ہی نہیں ہے, مل جائیں گے آپ کو سال ختم ہونے سے پہلے پہلے. اور توصیف شوقی اور چھوٹی اور گڈی نے درویش باغ بٹن بارہمولہ کشمیر سے لکھا ہے کہ بہت مس کیا آپ کو, آپ ہمارے بہت قریب تھی جب پاکستان میں تھی, لیکن پھر بھی آواز کا رشتہ جو ہے اس حوالے سے آپ بہت دور تھی, تو آپ کی کمی میں نے بہت محسوس کی. تھینک یو سو مچ توصیف, اور ابھی بھی مجھے آپ کے میسیجز مل رہے ہیں. یہ ہیں جی بشیر راٹھور لال پورا تنگ مرگ کشمیر سے لکھتے ہیں کہ میری ایک فرمائش ہے, مجھے گیت سنوا دیجئے, تو آپ پروگرام سنتے رہیے, ہو سکتا ہے آپ کی پسند کا گیت آج کے پروگرام میں شامل ہو. ماجد بھٹ نے ہمیں سلام لکھا ہے, تھینک یو سو مچ. محمد اصغر نے چارٹ بسٹرز کی پوری ٹیم کو سلام کہا ہے اور بہت سراہا ہے پروگرام کو, اور فائزہ کے انداز کو بہت پسند کیا ہے اور انہیں بھی سلام کہا ہے. پونچھ سے ہمیں کون ہے یہ جی, سکندر خان, انہوں نے ہمیں میسج کیا ہے اور پوچھا ہے کہ چارٹ بسٹرز کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب ہے یعنی چارٹ میں یا فہرست میں مقبول ترین گانے جو ہیں وہ, اگرچہ ہمارے پروگرام کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے لیکن نام پھر بھی ہمارا یہی ہے, کانسیپٹ یہ ہے کہ جو آپ کو پسند ہوں وہ گیت چلائے جائیں, جو چارٹ میں سب سے فیمس ہوں وہ ہم نہیں چلاتے بلکہ آپ کی پسند کے گیت. تو نام تھوڑا مختلف ہے اور کام ہمارے ذرا مختلف سے ہیں. یہ کون ہے جی کشمیر سے, लिखा है कि मैं कश्मीर से हूँ और मेरा मैसेज पढ़ दें, तो नाम तो लिखा नहीं है आपने तो, और आपको क्या पता कि मैंने आप ही का मैसेज पढ़ा है या किसका पढ़ा है। फैसल यूसुफ बलोच ने भी सबको सलाम कहा है और एक गीत की फरमाइश की है, और श्रीनगर से मोहम्मद, श्रीनगर से नहीं सिंगर लिखा हुआ है, गीत ये सुनना चाहा है आपने बिल्कुल। अशोक ग्रोवर जी लिखते हैं कि मेरी तरफ से, प्रवीण ग्रोवर जी की तरफ से, विक्रमजीत ग्रोवर की तरफ से, भटिंडा से हम आपसे ये फरमाइश कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी जी के गीत की। तो बिल्कुल अशोक जी सुनते रहिए, आपकी पसंद का गीत शामिल है। और इससे पहले कि अगले गीत की तरफ जाएं, आशिक खास खेली का मैसेज पढ़ देते हैं। लिखते हैं कि प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, हमें एक मैडम नूरजहाँ की आवाज़ में एक गीत सुनवा दीजिए। बिल्कुल आपको सुनवाते हैं हम अभी गीत, आपके दोस्तों मीर बख्शांडियो, मीर अमानुल्ला बरोही, अहमद खान और गाजी खान खोसा और सिंधी रेडियो लिसनर्स क्लब नवाब शाह के जितने भी मेंबर हैं उनकी तरफ से आपने सलाम लिखा है, थैंक यू सो मच। और चलते हैं अगले गीत की तरफ जिसकी फरमाइश की है तालिब ने। वेलकम बैक, और हमारे साथ अब कॉलर्स मौजूद हैं। मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा टाइम कॉलर्स को भी दे दें, कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे। अफजल अजीज हमारे साथ हैं चकवाल से, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम,
कैसे हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी छुट्टियां गुजरी हैं?
बिल्कुल ठीक, जबरदस्त।
अल्लाह आपको बिल्कुल ठीक और अपनी हिफ्ज़ और अमान में रखे, पूरी टीम के साथ, पूरे लिसनर के साथ, पूरी इंसानियत के साथ। आपसे गुजारिश की थी एक फरमाइश की, और वो है हज़रत पीर मेर अली शाह साहब का कलाम अगर आप सुनवा दें, या सैफ अल मलूक सुना दें मियां मोहम्मद साहब का, और कैलेंडर का तो हम इंतजार ही कर रहे हैं अभी तक।
हम ये दोनों चीजें सुना चुके हैं आपको, बल्कि पीर मेहर अली शाह साहब का कलाम दो दफा सुनवा चुके हैं और आपको मियां मोहम्मद बख्श साहब का कलाम भी सुना चुके हैं। थोड़ी सी अपनी पसंद जो है उसको वसी करें ना, हमें कुछ और भी बताएं आप।
अच्छा, अल्लाह ही अल्लाह किया करो वो सुना दें, कोई ना सुना दें।
जी ठीक है, अल्लाह ही अल्लाह किया करो सुना देंगे
जी। और कैलेंडर की कब तक हम उम्मीद रखें?
बिल्कुल उम्मीद रखें, उम्मीद भाई तो दुनिया कायम है। थैंक यू सो मच अफजल अजीज साहब
जी,
बहुत शुक्रिया। अल्लाह दीदा शाकिर साहब से बात करते हैं जिन्होंने पिपली अड्डा बिहाड़ी से कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम मैडम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक?
बिल्कुल ठीक ठाक।
हाँ, एक महीना और सात दिन गुजर गए हैं, हमें ऐसे लगता है कि कल आपका आखिरी प्रोग्राम था और आज फिर आपने जाए,
बस वक्त गुजर जाता है।
हम आपको भूले नहीं ना, ना लिस्नर भूले हैं आपको।
बहुत शुक्रिया।
बात मैंने पिक्चर भी कुछ भेजी थी आज कल इंटरनेशनल रेडियो क्लब और फ्रेंड क्लब फैसलाबाद के जेरे तमाम जो एक
ठीक है, मैं
शो तकरीब
अपने पेज पे लगा दूंगी। बिल्कुल
हाँ जी, वो बिल्कुल मैंने भेजी है, तो तमाम लिसनर ने शिरकत की और फरूख खान जिनकी शादी हो गई है, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। फैज खान के बेटे जो है
मीरने वालक से
4 मार्च को उनकी शादी थी, जो पिछले दिनों को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि उनके नाम कोई हमारे इंटरनेशनल फोरम की जानब से कोई सॉन्ग चलाना। और तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने फैसलाबाद में, खासकर हमारे मोहतरमा तहमीना दंताना साहब ने शिरकत की आवाज शो तकरीब में, तो उनका भी शुक्रिया। और तमाम
बहुत शुक्रिया ललिता साहब। और
मुल्तानी कर या कौशर जपानी की आवाज में हो सके तो अगले प्रोग्राम में सुनवा देना।
ठीक है, थैंक यू सो मच, बेहद शुक्रिया। और तस्वीरें हम लगा देंगे। और फारूक आपको बहुत बहुत मुबारक हो शादी की, और आपके लिए हम नेक्स्ट फ्राइडे को कोई बहुत अच्छा सा गीत डेडिकेट करेंगे आपको और आपके मिसेज को। रमजान कैसर मशहूरी ने कोट अद्दू से कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है जी? ठीक हो, खैरियत?
जी जी बिल्कुल, आप कहिए।
अल्लाह का शुक्र है, वो लगता है मोहम्मद रमजान कैसर मशहूरी बस्ती मशहूरी वाला कोट अद्दू से।
जी जी,
इंटरनेशनल रेडियो लिसनर क्लब के तहत हम बात कर रहे हैं।
सही,
बड़ा इंतजार था आप लोगों को, मैं आपको ना प्यार से कैसी बाजी बोलता हूँ।
पता है मुझे
थोड़ा सा डाउन है, पता नहीं खैरियत तो है, मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा खाया पिया है आप लोगों ने वहाँ पे पाकिस्तान में।
पाकिस्तान में चॉइस ही क्या होती है, सुबह पराठा खाते हैं, दोपहर को रोटी खाते हैं, रात को रोटी खाते हैं, पराठा रोटी रोटी, मतलब लगता है रोटी के अलावा कोई काम ही नहीं है वहाँ पर।
माशाल्लाह, मक्खन साग और भी चीजें। अच्छा जी, मैं मेरी फरमाइश है,
बोलिए।
जुबैदा खरम की आवाज में
कौन सा गीत?
चांद उनसे जाके मेरा सलाम कहना।
ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और चलते हैं अगले गीत की तरफ, क्योंकि गीत काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी आशिक खास खेली साहब का हमने मैसेज पढ़ा था नवाब शाह से, तो उन्होंने इस गीत की फरमाइश की थी। तो आशिक साहब, क्योंकि आपके मैसेजेस आ रहे हैं तो मुझे बताया आप सुन रहे हैं, तो इन्जॉय कीजिए अपनी पसंद का ये गीत।
Yeah.
ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے. آپ سن رہے ہیں چارٹ بسٹرز, اور اگین میں چاہتی ہوں کہ آپ کے سارے پچھلے میسیجز پڑھ دوں تاکہ پھر سے سلسلہ نیا جو ہے وہ شروع ہو. ظاہر خان لکھتے ہیں کہ فائزہ بہن آپ نے میرا نام شامل نہیں کیا, چترال سے ہر جمعے کو آپ کا پروگرام سنتا ہوں. تو کوئی میں پہلے بھی آپ سے کہتی ہوں کوئی میسیج تو لکھا کریں نا, صرف نام شامل کرنے کا کیا فائدہ, کوئی اچھا سا چھوٹا سا میسیج کر دیا کریں, اچھا بھی لگتا ہے. صرف نام لیں گے تو کیا اس سے فرق پڑے گا آپ کو کہ ظاہر خان صاحب نے چترال سے ہمیں اپنا نام بھیجا ہے, تو آپ پلیز کچھ لکھا کریں. جی نذیر احمد بھنڈر صاحب نے ہمیں کال بھی کی تھی اور لکھا کیا ہے کہ سادیہ بیٹی فون پر بات ہو سکتی ہے آپ سے, بہت اچھا محسوس کروں گا, اور آپ کو عروب آنے کی دعوت دینی تھی. تھینک یو سو مچ, اب تو میں یہاں پہنچ گئی, آپ کی دعوت جو ہے وہ پھر کسی وقت صحیح. افتخار احمد نے سب کو سلام کہا ہے اور لکھا ہے کہ فائزہ پروگرام اچھا کرتی تھی, انگریزی زیادہ بولتی تھی. میں یہ بھی بتا دوں گی ان کو. اچھا افتخار احمد صاحب نے بہت ہی خوبصورت خوبصورت پھولوں کے گجرے, ہار, انگوٹھیاں اور ان سب کی تصویریں بنا کے بھیجیں, کیونکہ ان کی پھولوں کی دکان ہے, وہ گل فروش ہیں. تو آپ کے پھولوں کے تحفے کا بہت شکریہ. وقار یونس نے ہمیں میسج بھیجا تھا اور فرمائش کی تھی جو کہ ہم نے پوری کر دی. کون ہے جی, چنا پورا کران سے. ہاں جی کون ہے, نام تو لکھا ہی نہیں آپ نے, نام ذرا پلیز کلیئر لکھا کریں. پتہ نہیں چلتا مجھے کہ کس نے میسج کیا. میں چاہتی ہوں کہ آپ نے جتنے بھی میسج کریں آپ کے پروگرام میں شامل ہو جائیں. یہ کون ہے جی, سلیم علی منہاس کہتے ہیں کہ مجھے گیت سننا ہے اور میں نے آپ کا بہت ہی بے صبری سے انتظار کیا. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اور عیسا طالب ہیں, انہوں نے چاندنی راتیں سننا چاہا تھا, ہم نے ان کو سنا دیا. ندیم امجد ندیم گھلو بھکر سے لکھتے ہیں کہ مجھے منصور ملنگی کا گیت سنا دیجیے. شامل تو کیا ہے, یہ نہیں پتا ہم چلا پائیں گے یا نہیں چلا پائیں گے. تو محمد اشتیاق نے ہمیں میسج کیا تھا, بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. اور چلتے ہیں اگلے گیت کی طرف. اور یہ کس کی فرمائش ہے جی, ہاں بھٹنڈا سے اشوک گروور جی کی اور ان کی ساری فیملی کی فرمائش ہے. محمد رفیع کی آواز میں انہوں نے یہ گیت سننا چاہا تھا.
جھل مل ستاروں کا آنگن ہوگا, رم جھم برستا ساون ہوگا, جھل مل ستاروں کا آنگن ہوگا, رم جھم برستا ساون ہوگا. ایسا سندر سپنا اپنا جیون ہوگا, سے سجائیں گے بگیا سے سندر وہ بن ہوگا, رم جم برستا ساون ہوگا.
ویلکم بیک, بلکہ اب تو جانے کا وقت آ گیا ہے. چند ایک میسیجز آپ کے شامل کر دوں تاکہ ختم کر دوں میں آج. صفدر ساحل نے ہمیں وہاڑی سے میسیج کیا تھا اور بہت لمبا چوڑا اور بہت تعریفیں کی ہیں, تھینک یو سو مچ. اور کہتے ہیں کہ میں ریگولر لسنر ہوں. ہمایوں خان نے کوہاٹ سے لکھا ہے کہ پلیز 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 میری فرمائش پوری کر دیں. کون سی فرمائش کی تھی آپ نے, میں بعد میں دیکھوں گی کہ کیا فرمائش تھی, ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے. اشفاق احمد جاوید نے ہمیں میسج کیا تھا, تھینک یو سو مچ. وکاس انجم نے میسج کیا, یاسر چغتائی نے میسج کیا, اور بہت ہی پروگرام پروگرام کی آپ نے تعریفیں کی ہیں. جاوید گجر ضلع لہیا پنجاب سے لکھتے ہیں, السلام علیکم سعدیہ باجی, آپ کے پروگرام میں میرا یہ پہلا میسج ہے آپ, لیکن میں آپ کا پروگرام ریگولر سنتا ہوں, بہت اچھا ہے, میرے پاس الفاظ ہی نہیں کہ میں تعریف کروں. ایک سرائیکی گیت کی فرمائش کی ہے آپ نے, میں کوشش کروں گی نیکسٹ ٹائم ضرور پوری کر دوں. اس وقت بشیر راٹھور کی, جنہوں نے کشمیر سے میسج کیا تھا, ان کی فرمائش کا گیت سنتے ہیں.
چہرہ کیا دیکھتے ہو, دل میں اتر کر دیکھو نا, دل میں اتر کر دیکھو نا. چہرہ کیا دیکھتے ہو, دل میں اتر کر دیکھو نا, دل میں اتر کر دیکھو نا. موسم پل میں بدل جائے گا, پتھر دل بھی پگھل جائے گا. میری محبت میں ہے کتنا اثر دیکھو نا, کتنا اثر دیکھو نا.
بس وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا, آپ سے زیادہ باتیں بھی نہیں ہو پائیں, اور کوشش کی تھی آپ کے سارے میسیجز شامل کر دوں. ہمیں اب آپ اجازت دیجئے سعدیہ زیب رانجھا کو, اور میرے ساتھ پروڈیوسر تھے انجم ہیرلڈ گل, اور انجینئر تھے السنتوس کو, اور آخر میں امجد ندیم گھلو کی بھکر سے جنہوں نے فرمائش کی تھی وہ گیت سنتے ہیں. اگلے جمعے کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اللہ نے کے بان.
نہیں رس دے سجن پیارے کپل موتیے دوار کی جگہ سونیے جی, کپل موتیے دوار کی جگہ سونیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
تسلیم کی تائی میں ہو سی جگ تیرا شوقی, میرا نت ٹریارا چن مائی توہین پیرا ہیٹ لتار ودا آمین آمین آمین. آئے منڈیاں جھوٹ مایا اج تو فردا ہے جیوے دل ہی لٹ مایا, جیوا صدقے گلے دی ہسیے چکی پار لکٹھیا وسیے, کبل موتیے دمار کی جگہ سونیے نیک پھول, موتیے دمار کی جگہ
نے بھاری اکثریت سے ایک قرارداد کی منظوری دی ہے جس میں یہودیت مخالف نظریے اور تعصب پر مبنی خیالات جیسی ہر قسم کی نفرت کی سوچ کی مذمت کی گئی ہے. یہ اقدام ایک مسلمان خاتون رکن کانگریس ڈیموکریٹ جماعت کی الہان عمر کے اس بیان کے نتیجے میں تند و تیز بحث کے بعد کیا گیا ہے جو انہوں نے اسرائیل کے حوالے سے پالیسی کے بارے میں دیا تھا. قرارداد میں نئی رکن کانگریس الہان عمر کا نام لے کر سرزنش تو نہیں کی گئی, تاہم عدم برداشت پر مبنی نفرت انگیز اظہار خیال کی مذمت کی گئی جو قرارداد کے مطابق امریکی اقدار اور امنگوں کے منافی ہیں. الہان عمر نے حال ہی میں امریکہ میں اسرائیل کے حق میں وکالت کرنے والوں کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ ایک بیرونی ملک کے ساتھ وفاداری کی حمایت کرتے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے امریکی اسرائیلی پبلک افیئرز کمیٹی کے مالیاتی اثر و رسوخ پر بھی سوالات اٹھائے تھے جو امریکہ میں اسرائیل کی حامی نہایت با اثر لابی ہے۔ الہان عمر صومالی امریکی مسلمان ہیں۔ کانگریس میں متعدد ریپبلکن اور چند ڈیموکریٹس نے شکایت کی کہ قرارداد کی اہمیت کو کم کر کے اس میں اسلاموفوبیا اور دوسری اقلیتوں کے خلاف امتیاز سمیت ہر قسم کے تعصب کو کم کر دیا گیا۔ اس سے پہلے امریکی ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹس اس بارے میں الجھن کا شکار رہے کہ نئی ڈیموکریٹک رکن کانگریس الہان عمر کی تنبیہ کس طرح کی جائے اور یہ کہ ایسا کیا بھی جائے یا نہیں۔ اسرائیل کے حوالے سے ان کے ناقدانہ ریمارکس کو بہت سے ہلکے ناپسندیدہ خیال کرتے ہیں۔ قبل ازیں کین بریڈمائر کی پس منظر رپورٹ میں کہا گیا ہے، ایوان میں اس سلسلے میں قرارداد بحث و تمہیز کا محور رہی جس میں اسلاموفوبیا اور یہودیت مخالف نظریے کی مذمت کی گئی ہے۔ اس کا رخ واضح طور پر کانگریس کی خاتون رکن الہان عمر کی جانب تھا جو ان دو مسلمان خواتین میں شامل ہیں جو گزشتہ نومبر میں 435 ارکان پر مشتمل ایوان نمائندگان کے لیے منتخب ہوئی ہیں، تاہم قرارداد میں ان کا نام نہیں لیا گیا۔ 37 سال کی قانون ساز کے حوالے سے قرارداد کے بعد ان سوالات نے جنم لیا ہے کہ انہیں اس بیان کی ضرورت بھی تھی یا نہیں، اور یہ کہ آیا ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے انہیں غیر منصفانہ طور پر نشانہ بنایا جاتا رہا ہے یا پھر یہ کہ اسرائیل کے بارے میں ان کے ریمارکس کو نظر انداز کر دینے کی ضرورت تھی، اس لیے کہ ایوان نے یہودیت مخالف نظریے کی مذمت میں پہلے ہی حال ہی میں ایک بیان کی منظوری دی تھی۔ الہان عمر نے اپنے ریمارکس سے بہت سے اپنے ساتھی ڈیموکریٹس کو ناراض کر دیا، اور متعدد ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ ان کا بیان یہودیت مخالف تھا اور انہوں نے اس کی مذمت بھی کی۔ دوسری جانب جبکہ ایوان میں ڈیموکریٹس کی اکثریت اس کشمکش میں مبتلا رہی کہ اس تنازع کا جواب دیا جائے، صدر ٹرمپ نے انہیں سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ ٹرمپ نے بدھ کے دن ٹویٹر پر کہا کہ یہ شرم کی بات ہے کہ ڈیموکریٹس یہودیت مخالف خیال پر زیادہ سخت موقف اختیار نہیں کر رہے۔ الہان عمر نے اس پر معذرت کر لی تھی اور اس سے پہلے ایک قرارداد پر ووٹ دیا تھا جس میں یہودیت مخالف سوچ کی مذمت کی گئی تھی۔ تقریباً درجن بھر اسرائیل نواز گروپوں نے ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی سے کہا کہ وہ ایوان کی خارجہ امور کی کمیٹی سے الہان عمر کی رکنیت خارج کر دے، تاہم ایوان میں اعلی ڈیموکریٹس ایسا اقدام کرتے کرتے رہ گئے۔ تمام ڈیموکریٹس نے الہان عمر کے ریمارکس کی مذمت نہیں کی، اور ایوان میں کم از کم دو نئی خاتون قانون سازوں، راشدہ طلیب جو پہلی فلسطینی امریکی رکن کانگریس ہیں، اور نیو یارک کی رکن کانگریس الیگزینڈریا اوکیزیو کارٹیز نے ان کا دفاع کیا۔ دوسروں نے اس بات پر سوالات اٹھائے کہ الہان عمر کو ہی کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے جبکہ سن 2017 میں ورجینیا میں سفید فام قوم پرستوں کی ایک ریلی میں نفرت پر مبنی یہودیت مخالف تقریر کی ٹرمپ نے ابتدان مذمت نہیں کی تھی اور کہا تھا کہ دونوں جانب اچھے لوگ موجود تھے۔ رکن کانگریس رشیدہ طلیب نے کہا کہ الہان عمر کو ٹھیک اسی طرح نشانہ بنایا گیا جب ہم سے پہلے شہری حقوق کے علم بردار بہت سی شخصیتوں کو نشانہ بنایا گیا تھا جنہوں نے جابرانہ پالیسیوں کے خلاف آواز بلند کی تھی۔ ایوان میں ڈیموکریٹک اکثریت کے درمیان بحث میں قرارداد میں مسلمانوں کے خلاف تعصب کی مذمت کے بارے میں بھی الفاظ کا اضافہ کیا گیا۔ ایک اور ڈیموکریٹ لیڈر رکن کانگریس سٹینی ہوئر نے کہا کہ یہ سوچ پائی گئی کہ قرارداد وسیع تر ہونی چاہیے، ہم جس بات کے مخالف ہیں وہ ہے نفرت، تعصب، کٹر نظریہ، سفید فام بالادستی، اسلام کا خوف اور یہودیت مخالف خیالات۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔